आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और आज हम स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और इसको लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। सो पैट्रिक प्रिंगल जो है वो एक न्यूयॉर्क से एक बायोग्राफर है, जिन्होंने बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज के बारे में लिखा है, उनकी लाइफ के बारे में लिखा है, और उसी में से ये जो हमारा स्टोरी है वो एक पार्ट है, जो कि हमें ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें हुई आइंस्टाइन के साथ, जो कि जिसके वजह से उन्हें स्कूल से निकाला गया और फिर उनकी जर्नी स्टार्ट हुई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट बनने की। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रुशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। आई डोंट नो सर। व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क मिस्टर ब्राउन। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। व्हाई नॉट? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. Mr. Brown was speechless for a few moments. You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. Yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly, sir, I don't know, said Albert. Then you don't believe in education at all? Oh, yes, sir, I do. I don't think learning facts is education. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. Albert flushed. I think it's not facts that matter, but ideas. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do much good, it won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. So, यहाँ पे एक opening scene जो हमें पता चलता है, उसके हिसाब से जो Einstein है, वो एक history class में बैठे हुए हैं, और Einstein से उनके जो history teacher है, वो उनका एक battle का date पूछ रहे हैं, उसका year पूछ रहे हैं, and clearly Einstein उसके dates remember करने में या किस आर्मी ने कितने लोगों को मारा, कौन जीता, ये सब में वो इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट उनका ये आइडिया है कि हम लोग ये पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि हम लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि ऐसी क्या बात हुई जिससे वॉर हुई, ताकि हम लोग फ्यूचर में वो वॉर को रोक सकें। और ये बात उनकी टीचर मिस्टर ब्राउन को कुछ खास पसंद नहीं आती है, एंड इनफैक्ट वो उनको टॉन्ट भी करते हैं, उनके टीचर आइंस्टाइन को टॉन्ट भी करते हैं और उनको पनिश भी करते हैं कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए स्कूल में रुकना पड़ेगा। और वैसे वो ये भी मानते हैं कि आइंस्टाइन का कुछ होने वाला नहीं है, मतलब द टीचर जो है वो टीचर है वो होपलेस हैं आइंस्टाइन की तरफ से, उन्हें लगता है कि आइंस्टाइन कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है और वो जो है वो सिर्फ मतलब सिर्फ टीचर से बहस करना जानता है। दैट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor. But he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. So यहाँ पे क्या होता है कि वो उनको मतलब वो उतने ज़्यादा adjust नहीं कर पाए थे वो अपने school में, because of course उनकी thinking अलग थी, और इसी वजह से ना उनके कोई friends थे और ना उनको कोई teachers पसंद करते थे. So वो जो है वो बहुत ही disappointed अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा खुश इस वजह से नहीं थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो अपने फादर से कहेंगे भी उन्हें हटा देने के लिए स्कूल से, तो भी वो नहीं मानेंगे, बिकॉज उनको क्या चाहिए था कि डिप्लोमा. अभी हर पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है कि बच्चा जो है वो डिग्री ले ले, तो उनके पेरेंट मतलब उनके फादर का भी यही था. और वो लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि बस वो इतना ही वो पैसा आइंस्टाइन को दे सकते थे जितने में एक स्लम एरिया में एक कमरे का क्वार्टर उनको मिल सके. सो उनका कहना है कि वो वहाँ के डिस्कम्फर्ट या फिर वहाँ के लोकेलिटी से उतना ज़्यादा उनको परेशानी नहीं थी जितना वहाँ के एटमोसफियर से था. वहाँ का जो सराउंडिंग था वो इतना ज़्यादा नेगेटिव था, और हर वक्त जो है कोई ना कोई लड़ता रहता था. जो उनकी मकान मालिक की बीवी थी वो अपने बच्चों को पीटती थी, और जब मकान मालिक आता था तब उनको खुद भी अपनी बीवी को पीटता था. तो ये सारे वायलेंस से वो बिल्कुल फेड अप हो चुके थे. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? And what happens to one who killed him? Nothing, of course. He is even proud of it. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Ugh! On and these are the students. Well, you will be a student one day, said Yuri. I doubt it, said Albert gloomily. I don't think I'll ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally, she lived in Berlin, where her father had a business. I'm sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you're taught. Just be able to repeat it in the exams. सो यहाँ पे क्या होता है कि उनके जो एक फ्रेंड होते हैं यूरी, वो अपना सारा मैटर जो है वो उनको बताते हैं कि देखो मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ और मैं क्यों इस एरिया में उस स्लम में नहीं रहना चाहता हूँ. और जबकि यूरी भी कहते हैं कि एटलीस्ट तुम एक ह्यूमंस के साथ तो रह रहे हो. वहाँ वो जिस लोकेलिटी में रहा करते थे, तो वहाँ में वो जो है एक स्टूडेंट लोकेलिटी थी, और वो स्टूडेंट लोकेलिटी भी कैसी कि वो लोग यू नो दो लोग आपस में भिड़ते थे, और वो लोग अगर एक दूसरे को किसी का मर्डर भी कर दें तब भी उनको पनिशमेंट या जेल नहीं होती थी. द ओनली पनिशमेंट वॉज कि आगे से उस बंदे को लड़ाई नहीं करने दिया जाता था किसी और से. एंड ये जो है वो एक स्टूडेंट सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम लोग. तो एल्बर्ट और यूरी दोनों ही इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टेड थे कि ये क्या बात हो गई, ये कौन सी बात हो गई. एंड देन उनकी एक कज़िन थी एल्सा, एल्बर्ट की. सो वो नेक्स्ट टाइम जब वो म्यूनिक में आई, जो एल्सा थी वो कहाँ पे रहती थी, वो बर्लिन में रहती थी जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस था, और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो कहाँ रहते थे, वो म्यूनिक में रहते थे. सो नेक्स्ट टाइम जब एल्सा म्यूनिक आई, तो उन्होंने ये सारी अपनी दुविधा जो है वो एल्सा को भी बताई. तो एल्सा ने कहा कि इट्स ओके, और तुम जो भी एग्जाम्स है और जो स्कूल का डिप्लोमा है वो तुम आराम से पास कर सकते हो, तुम्हें किसी बात की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस एक रट्टू तोता बनना है और जो भी टीचर तुमको सिखा रहा है वो जा करके तुमको पेपर में लिख देना है. और मैंने तो बहुत सारे खराब स्टूडेंट्स को देखा है, एटलीस्ट तुम उनमें से एक नहीं हो, तुम आराम से पास हो सकते हो. दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet I always see you with the book under your arm," added Elsa. "What is the one you're reading?"
"A book on geology."
"Geology? Rocks and things? Do you learn that?"
"No, we have hardly any science at school."
"Then why are you studying it?"
"Because I like it."
"Isn't that a good enough reason?"
Elsa sighed. "Ah, you are right, of course, Albert, but it won't help with your diploma."
Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop.
"That wailing gets on my nerves," she said. "That's enough noise in the house, with all the kids howling."
Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing.
"I must get away from here," he told Yuri after 6 months alone in Munich.
"It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be a better for all if I stop now."
"And then what will you do?"
asked Yuri.
"I don't know. If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back. Unless..." His eyes gleamed with a sudden idea.
"Yuri, do you know any friendly doctors?"
"I know a lot of medical students, and some of them are friendly," said Yuri.
"Doctor, no, I have never had enough money to go to one.
Why?"
"Suppose that I had a nervous breakdown?
Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it."
So, ab kya hota hai? Ki jab unhone apni cousin Elsa ko bataya, to unhone bataya ki yahi to baat hai, mujhe ek rattu tota nahi banna hai. और इस बात से एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बिल्कुल मतलब कॉमन नहीं थे उस चीज़ के साथ एल्सा पे कि स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए जो कि आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, ना कि सिर्फ पास होने के लिए. तो एल्सा ने बोला कि मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी प्रॉब्लम क्या है. तुम तो आराम से एक रट्टू तोता बन सकते हो और मैं हमेशा तुम्हें किसी न किसी बुक के साथ ही देखती हूँ. और अभी वाली कौन सी तुम बुक पढ़ो? तब एल्बर्ट बताते हैं कि वो एक बुक पढ़ रहे हैं जियोलॉजी पे. तब एल्सा हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि क्या जियोलॉजी तुम्हें स्कूल में अभी पढ़ाते हैं? तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं बस अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ता हूँ और कोई बात नहीं है. मैं बस जो भी बुक्स पढ़ता हूँ वो मैं अपनी खुशी से अपने नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ता हूँ और ना कि मैं कोई डिग्री के पीछे भाग रहा हूँ. तब ये सारी बात हो जाती है. एंड देन फिर एक बार और जब वो अपने फ्रेंड यूरी से मिलते हैं तब वो ये बात डिस्कस करते हैं कि अब जो है 6 महीने हो चुके हैं मुझे म्यूनिख में अकेले रह करके और मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ या रुक करके. मैं अपने बाप का पैसा भी बर्बाद कर रहा हूँ और लोगों का टाइम भी बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे डिप्लोमा नहीं मिलने वाला है स्कूल से. तब उन्हें अचानक एक आइडिया आता है और वो यूरी से पूछते हैं कि क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? तब यूरियस पे कहते हैं कि देखो, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ लेकिन आज तक मैं किसी डॉक्टर के पास गया नहीं क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे. तब आइडिया ये आता है एल्बर्ट को कि अगर वो किसी डॉक्टर से फेक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें कि उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो 6 महीने तक स्कूल नहीं जा पाएंगे. अब देखो आगे क्या होता है.
"आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट," सेड यूरी. "आई मस्ट ट्राई to find a doctor who specializes in nerves."
"There are plenty of them," Yuri told him. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, "I'll ask some of the students if they know one, if you like."
"Will you?
Oh, thank you, Yuri." Albert's eyes were shining.
"Wait a moment. I haven't found one yet."
"Oh, but you will. And if I do, I don't know if he'll be willing to help you."
He will. I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him," he laughed merrily.
"I have never seen you looking less nervous," remarked Yuri. "A day or two at school will soon put that right,"
Albert assured him. Certainly, he had lost his high spirits when Yuri saw him next.
"I can't stand it any longer.
I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. Keep it up then. I found a doctor for you, said Yuri.
You have? Oh, good. When can I see him?
I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here's the address. He handed Albert a piece of paper.
Dr. Ernstwell? Is he a specialist in nervous troubles? Asked Albert.
Not exactly. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week.
You may have been
his first patient.
You knew him as a student then.
I've known Ernst for years. Yuri hesitated for a few moments. He's not a fool, he warned Albert.
What do you mean?
Don't try to pull the wool over his eyes, that's all. Be frank with him. But don't pretend you have caught what you haven't.
Not that you would deceive anyone, Yuri added. You're the worst, world worst liar.
So, यहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है तुम किसी डॉक्टर का पता लगाओ तो लेकिन यूरी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई डॉक्टर तुम्हारे इस झूठ में तुम्हारा साथ क्यों देगा तो कहते हैं कि नहीं ये झूठ नहीं होने वाला है मुझे जो है वो एक्चुअली में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है तो कहते हैं कि क्या मतलब तुम एक्टिंग करोगे और मुझे तो तुम्हारी तबीयत कहीं से भी खराब नहीं लगती है तब एल्बर्ट कहते हैं कि रुक जाओ दो तीन दिन जब मैं स्कूल जाऊंगा तो खुद ही मैं इतना ज्यादा फेड अप हो जाऊंगा कि मुझे अपने आप ही नेचुरली नर्वस ब्रेकडाउन होने लगेगा मेरा एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट ये एक्चुअली हुआ भी जब यूरी उनसे कुछ दिनों बाद मिले तब वो एक्चुअली वो जितने खुश नजर आ रहे थे लास्ट टाइम मीटिंग पे वो इतने ज्यादा नहीं थे वो बहुत ही उदास थे और वो सच में थोड़े बीमार लग रहे थे तब उन्होंने एक डॉक्टर का एड्रेस दिया जिनका नाम था अर्नस्ट व्हील उनका एड्रेस दिया और कहा कि ये जो है वो अभी अभी डॉक्टर बने हैं एंड तुम इसको जाकर के अपने आप को दिखा सकते हो और साथ ही साथ यूरी ने एल्बर्ट को वॉर्न भी करा कि तुम उनके सामने उनको चीट नहीं कर सकते हो तो प्लीज बी केयरफुल तुम्हें कोई जरूरत नहीं है प्रिटेंड करने की कि जो तुम्हें नहीं है हाँ तुम उनके साथ जो बात है वो सच सच बता सकते हो सकता है तुम्हें कोई हेल्प मिल जाए और इस बात पे एल्बर्ट यूरी को धन्यवाद देते हैं और बाद में कहते हैं कि वो ये सारी चीजें खुद मैनेज कर सकते हैं एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर व्हील ही बिगैन डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल Yuri has already given me a history of the case. Oh, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you mustn't go back to that school. Oh dear, he shouldn't have told you that. Albert's face fell. Why not? Isn't it true then? Yes, that's the trouble. Now you'll say there's nothing wrong with me and you'll let me go back to school.
Don't be too sure of that. As a matter of fact, I'm pretty sure you are in a nervous state about that school.
But I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed.
How can you know that?
Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why.
Now, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay safe from school for a while, what will you do?
I'll go to Italy, said Albert, to Milan, where my parents are.
And what will you do there?
I'll try to get into an Italian college or institute.
How can you?
Without a diploma?
I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. I have learned all the maths they teach at school and a bit more. He added when Dr. V looked doubtful.
Well, it's up to you, he said. I doubt if it will come off, but I can see you're not doing yourself or anyone else much good by staying here. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right?
This is very kind of you.
It's nothing. I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Veel handed him with a certificate and the best of luck.
How much?
Nothing. If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. He's a good friend of mine and yours too, I think. Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper.
So, अब क्या होता है कि डॉक्टर के पास वो चले जाते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन और अपनी प्रॉब्लम जैसी वो बताने वाले होते हैं तो वैसे ही जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर वील वो बोलते हैं कि मुझे ऑलरेडी केस की हिस्ट्री जो है वो यूरी ने दे दिया है और यूरी मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है. तब उन्होंने पूछा कि आपको यूरी ने एग्जैक्टली क्या बताया, तो यूरी ने उनको सब कुछ सच सच बता रखा था कि वो मेरा फ्रेंड जो है एल्बर्ट वो आपके पास आएगा और वो चाहता है कि आप उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो, ये कह करके कि वो अभी 6 महीने के लिए स्कूल नहीं जा सकता है. तब एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़े निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब जब आपको सच्चाई पता है तब आप ऑफकोर्स मेरी हेल्प नहीं करेंगे और आप मुझे वापस उस स्कूल में भेजने की कोशिश करेंगे. तब डॉक्टर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये बहाना है, क्योंकि मुझे एक्चुअली तुम एक नर्वस स्टेट में लग रहे हो, तुम घबराए हुए लग रहे हो स्कूल से. तो वो उनका प्लान जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर के, आखिर वो स्कूल से जो है इतने प्लान करके वो भागना क्यों चाहते हैं और अपना फ्यूचर किस तरह बनाना चाहते हैं. तभी एल्बर्ट जो है वो अपना प्लान बताते हैं कि मैं इस स्कूल से निकल के अपने पेरेंट्स के पास मिलान चला जाऊंगा. मिलान जो है वो इटली में एक सिटी का नाम है. सो मिलान वो चले जाएंगे और वहाँ पे जाकर के अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे किसी इटालियन कॉलेज से. तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि वो तो बिना डिप्लोमा के, स्कूल डिप्लोमा के पॉसिबल नहीं है. तब वो बताते हैं कि क्योंकि उन्हें मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी तो उन्होंने सारा मैथ्स पढ़ रखा है और इनफैक्ट जितना स्कूल में पढ़ा था उससे कुछ ज़्यादा ही, और इस वजह से उनका जो इम्प्रेशन है वो अपने मैथ्स टीचर के सामने काफ़ी अच्छा है और वो एक अच्छी सी रिपोर्ट उन्हें बना के दे देंगे जिससे उनका एडमिशन हो सकेगा. तब डॉक्टर जो है वो मान जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए और उनको 6 महीने की सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वो स्कूल के लिए अनफिट हैं. और साथ ही साथ जब वो एल्बर्ट उनकी फ़ीस की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, फ़ीस की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम बस यूरी को अपने साथ एक मील पे यानी एक खाने पे एक दावत कर दो उसकी, और क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी काफ़ी अच्छा दोस्त लगता है. लेकिन हमारे एल्बर्ट के पास इतने पैसे तो उस वक्त थे नहीं, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने ये कहा कि मतलब प्रिटेंड करा कि जैसे उनके पास पैसे हैं और वो उनको एक लंच पे लेके गए. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. I'll never go back to that place, Albert assured him. I'm going to take this certificate to the head teacher tomorrow, and that will be the end of it. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. Mr. Kooch willingly gave Albert the reference he wanted. If I say I can't teach you anymore and probably you'll soon be able to teach me, will that be all right? He asked. That's saying too much, sir, said Albert. It's only the truth, but all right. I'll put it more seriously. It was still a glowing reference, and Mr. Kooch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. It's almost the only class where I'm not wasting my time, said Albert. But how did you know I'm leaving, sir? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you would wonder. There's nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. Albert was puzzled. What did the teacher mean? He soon found out. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two in outside, he thought. He hardly bothered to wonder why he had been sent for.
but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. So, अब क्या होता है कि of course वो जिस तरह से डॉक्टर ने बोला था कि तुम लोग जाकर के एक साथ में एक डिनर कर लो या खाना खा लो, तो वही होता है. और वो यूरी को अपनी सर्टिफिकेट दिखाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, और कहते हैं कि देखो ये कितनी अच्छी बात है कि फाइनली मुझे ये सर्टिफिकेट मिल गया और फाइनली मैं क्लास से छुटकारा पा सकता हूँ. लेकिन अब क्या होता है कि यूरी कहते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है और ये जो है एक हमारा एक बैकअप प्लान की तरह भी जो है एक्ट करेगा. अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाता है तब तो ठीक है, और नहीं भी तो तुम 6 महीने बाद वापस स्कूल में ज्वाइन तो कर ही सकते हो. तभी एल्बर्ट बोलते हैं कि मैं बिल्कुल पक्का हूँ इस बारे में कि मैं वापस स्कूल में नहीं आ रहा. तब वो कहते हैं ठीक है जो भी हो, लेकिन तुम अपने मैथ्स टीचर से रिकमेंडेशन लेटर लेना मत भूलना. एंड देन वही होता है, वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल जाते हैं और अपने मैथमेटिक्स टीचर के पास जाते हैं रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए. तब उनके जो मैथ्स के टीचर थे वो उनको बोलते हैं कि मैं लेटर में क्या लिखूं, ये लिख दूं कि आज मैं तुम्हारा टीचर हूं और कहीं फ्यूचर में जाकर के तुम मुझे पढ़ा रहे होगे. तब एल्बर्ट बोलते हैं कि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा सर, और ये ऐसा तो होने वाला है नहीं. तो वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम कितने केपेबल हो, और इनफैक्ट तो मेरे स्कूल में तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होता होगा मेरे क्लास में. तो वो कहते हैं कि आप ही का क्लास एक लौता क्लास था जिसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था. और तभी जो है वो कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम जो स्कूल से जाने वाले हो बिफोर कि तुम ये खुद समझ पाओ कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो. यू नो टीचर्स जो है हमें ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं और स्पेशली वो हमारे अंदर के पोटेंशियल को जानते हैं. तो उनके मैथ्स टीचर भी उनके पोटेंशियल को जानते थे और वो जानते थे कि वो अपने लाइफ के साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं. तब अब उन्होंने वो रिकमेंडेशन लेटर ले लिया, और उसके बाद अब उनको क्या किससे मीटिंग करनी थी, हेड टीचर से. तो इससे पहले कि वो उनके साथ मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेते, उन्हें हेड टीचर ने खुद ही कमरे में बुला लिया. और उनका गेस उनका ये था कि हो सकता है कि मेरे फिर से किसी बिहेवियर की वजह से या मैंने कुछ होमवर्क नहीं किया हो मुझे वापस से पनिशमेंट मिलने वाली है. लेकिन इस बार एल्बर्ट ने सोचा कि मैं जो हूँ अब सारी पनिशमेंट, जितनी पनिशमेंट मुझे लेनी थी वो मैं ले चुका, अब ऐसे भी मुझे स्कूल से कोई मतलब है नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज. योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेस्ट. दैट इज वॉट आई सेड. You mean that I'm to be expelled? You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go to your own accord, and then the question won't arise. But what crime have I committed? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn. You are in constant rebellion. And no serious work can be done while you are there. Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. I was going to leave anyway, he said. There was. Then we are in agreement at least, Einstein, the head said. For a moment, Albert had attempted to tell the man that he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high and stalked out. Shut the door after you, shouted the head. Albert ignored him. So, अब क्या होता है कि उन्हें पता था कि उन्हें फिर से कोई पनिशमेंट मिलने वाली है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब वो हेड के कमरे में गए तब हेड ने बोला कि मैं तुम्हें जो हूँ कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं तुमसे स्कूल को छोड़ने की बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने कहा कि छोड़ने की बात, इसका मतलब आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं? तो टीचर ने कहा कि तुम्हें जो समझना है तुम समझो, क्योंकि तुम जो हो हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो. तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बाकी सब्जेक्ट के पढ़ने में, और इतने तुम ज़्यादा जो हो वो ज़िद्दी हो चुके हो कि तुम्हारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो सारे स्टूडेंट्स को भी ख़राब कर रहा है, और वो सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए तुम्हारे और मेरे लिए बेटर यही होगा कि तुम स्कूल से चले जाओ और हमारा पीछा छोड़ो. और तभी अल्बर्ट को ये रियलाइज हुआ कि उनकी जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट थी वो तो बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि अब तो उन्हें वो खुद हेड टीचर ही निकाल रहे थे। बट एनीवे, एटलीस्ट ही वाज हैप्पी कि उन्हें यहाँ से जाने का मौका मिल रहा था। उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि वो जो भी उस स्कूल के बारे में और उस प्रिंसिपल यानी हेड टीचर के बारे में जो भी वो सोचते थे वो बता दे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और चुपचाप उनके कमरे से निकल गए। टीचर ने इनफैक्ट चिल्लाया भी कि दरवाजा बंद करके जाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, बिकॉज अब उन्हें ना उस हेड टीचर से कोई वास्ता था ना ही उस स्कूल से। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल इयर्स विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुडबाय टू। इंडीड, यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. Goodbye and good luck, said Yuri when he left. You are going to a wonderful country, I think. I hope you will be happier there. So, अब जो है जब वो स्कूल से अपने निकल रहे थे तो उनके अंदर कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि वो वापस पलट के उस स्कूल को देखें या स्कूल में से ही किसी अपने फ्रेंड को जो है वो बाय बोलें या गुड बाय बोलें, क्योंकि उनका कोई फ्रेंड एक्चुअली था ही नहीं। उन्हें हर कोई जो है वो डिसलाइक करता था और इस वजह से उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट एक यूरी ही थे जिसे वो जाने से पहले मिल करके बाय बोलना चाहते थे और वो उनसे मिले भी। एल्सा जो उनकी कजिन थी वो अभी भी बर्लिन में थी और इन दोनों के अलावा उनका कोई रियल फ्रेंड था नहीं जिससे वो मिल करके अलविदा कहना चाहते थे। तो यूरी ने उन्हें गुड बाय बोला और कहा कि आई होप कि जो है तुम मिलान में जाकर के अपनी लाइफ बनाओगे और यहाँ से ज्यादा खुश रहोगे। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। सो आपने देखा कि जो जो भी इंसान आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचता है उसको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कितनी प्रॉब्लम होती है। हर जगह एक इंटेलेक्चुअल्स को पहले आपको जो है वो आपके मजाक उड़ते हैं, आपको अपनाया नहीं जाता है क्योंकि आप कुछ लोगों से अलग होते हो। सो अलग होना बुरा नहीं है, आपको अगर आपको अपने शक्तियों पर भरोसा है तब आपको आइंस्टाइन के जैसे ही आगे बढ़ना चाहिए और रिस्क उठाना चाहिए। ओके, सो अब हम लोग इसकी इंटेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, What do you understand of Einstein's nature from his conversation with his history teacher, his maths teacher and the head teacher? So, आप देखो यहाँ पे तीन टीचर की बात करी गई है। वो हिस्ट्री टीचर और हेड टीचर दोनों से ही नफरत करते थे बिकॉज वो उन्हें ऐसी चीज़ों के लिए मनाना चाहते थे और ऐसी चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट करते थे जो उन्हें बहुत ही यूजलेस लगती थी, जैसे कि डेट्स याद रखना या फिर बस एक रट्टू तोता बन जाना। और वहीं पे मैथ्स टीचर की जहाँ आपने कॉन्वर्जेशन देखी तो आपको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी दिखी होगी कि वो मैथ्स टीचर भी जो है वो भी समझते थे आइंस्टाइन को, उनके दिमाग को, उनकी कैपेबिलिटी को, और साथ ही साथ आइंस्टाइन भी जो है वो उनको रिस्पेक्ट करते थे। सो वो ऐसा नहीं था कि आइंस्टाइन जो है वो एक बदतमीज स्टूडेंट थे, बल्कि जहाँ पे उनका इंटरेस्ट नहीं था वो बस अपने क्वेश्चंस अराइज करते थे, अपनी जो जिज्ञासाएं थी उन्हें वो टीचरों के सामने रखते थे, जो कि टीचर को इतना कुछ खास पसंद नहीं आता था। और इस वजह से टीचर ने खुद ही सोच लिया कि आइंस्टाइन जो है वो बदतमीज है और वो बिल्कुल भी पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। बट अकॉर्डिंग टू द मैथ्स टीचर वो काफ़ी उनका दिमाग जो था वो काफ़ी शार्प था। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कमेंट करा कि फ्यूचर में जाकर के हो सकता है कि आइंस्टाइन ही उनको पढ़ाएं, जो कि फिर हमें पता है कि वो सच भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स, डिस्कस। सो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि स्कूल का जो सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, वो बहुत सारे टैलेंट्स को दबा देता है। सो ये हम इंडियन स्टूडेंट से बेटर ये बात कौन समझ सकता है। हमें जो है वो बस सच में एक रट्टू तोते की तरह ही पढ़ाया जाता है, हमें सिर्फ बताया जाता है कि 99% स्कोर कैसे करना है। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे टीचर्स हैं, सब लोग हमसे बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग एक बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड ला करके दें। बट हो सकता है कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसका आर्ट अच्छा हो, वो पेंटिंग काफी अच्छा करता हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, लेकिन हमारे कंट्री में स्पेशली अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने में नहीं है, इसका मतलब कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना ही उसे जॉब मिलेगा, ना ही कुछ और। सो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हम लोगों पे विश्वास करने से थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी ही वैसी बिल्डअप है। लेकिन थैंकफुली अब बहुत जाकर के हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, और अब जो है वो दूसरे फील्ड्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी प्रमोशन मिल रहा है स्टूडेंट्स को, और स्पेशली स्पोर्ट्स के फील्ड में ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी हैं, और हर स्कूल में जो है वो कंपलसरी किया जा रहा है स्पोर्ट्स भी, तो विच इज़ अ गुड थिंग। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन? सो आप जो हैं, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, एक होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना और एक होता है इनसाइट फॉर्मेशन। सो हमें जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो एक दृष्टि प्रोवाइड नहीं कर पाता है, हमें जो है वो बस नॉलेज मगअप करने के, हमें बस रटने की या फिर डेट्स याद रखो, किसने किसको किस बैटल में हराया वो याद रखो, बस उस पर फोकस रहता है, ना कि एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे। सो जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो तो कहीं से भी हो सकती है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे बैठ जाओ पूरे दिन, आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो इनसाइट फॉर्मेशन होता है, जब आपके टीचर आपको इमेजिन करवाते हैं, जब आपके आइडिया को बढ़ावा देते हैं, दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड इनसाइट फॉर्मेशन। मतलब अपना खुद का जो एक पर्सपेक्टिव फॉर्म करना, अपना खुद का एक दृष्टिकोण होना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइजेस ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, इनफैक्ट ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमें किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है। क्या इसी वजह से जो है हमारे इंडियन टैलेंट्स, बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं आप देखोगे कि वो लोग सुसाइड करते हैं, बिकॉज वहाँ पे आइडियाज़ को जो है शायद इतना प्रमोट ना करके बस रिपोर्ट कार्ड पे ही बात चलती रहती है। सो आई होप कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बदले, टैलेंट्स को प्रमोट किया जाए, भले ही वो किसी भी चीज़ का टैलेंट हो, वो सिंगिंग हो, वो एक्टिंग हो, वो पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो। एंड ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आप इस चैप्टर को वापस पढ़ो खुद से, ताकि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, और मैं आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।